आयु एक बार फिर डॉक्टर मानसी की केबिन में बैठी हुई थी। प्रेगनेंसी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद आयु बहुत खुश थी, तो उसने आगे के सारे टेस्ट करवाए। बाकी टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद मानसी और आयु दोनों के चेहरे पर ही परेशानी के भाव थे। रिपोर्ट के हिसाब से आयु ये प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं कर सकती थी और उसे इसे अबॉर्ट करना होगा। आयु कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप रही और एकटक रिपोर्ट को देखती रही। उसकी आंखें नम होने लगी थीं। फिर उसने मानसी की तरफ देखकर धीरे से कहा, ट्राई करके देखने में क्या प्रॉब्लम है? अगर 2 महीने में कुछ नहीं हुआ तो 9 महीने भी निकल ही जाएंगे। मानसी आयु की हालत अच्छे से समझ सकती थी, उसके पास पहले भी ऐसे केस आ चुके थे। मानसी ने इमोशनल ना होकर प्रैक्टिकली जवाब देते हुए कहा, उम्मीद रखना बुरी बात नहीं है, लेकिन सच को नज़रअंदाज करना भी ठीक नहीं है। तुम भी जानती हो कि जितना टाइम निकलेगा चीज़ें तुम्हारे लिए उतनी ही मुश्किल होगी। तुम इस बच्चे के साथ अटैच हो जाओगी और फिर प्रेगनेंसी टर्मिनेट करना और मुश्किल होगा, इमोशनली भी और फिजिकली भी, तो मैं इसकी इजाज़त बिल्कुल नहीं देती। आई प्रॉमिस मैं अपना पूरा ध्यान रखूंगी और एक भी डोज मिस नहीं करूंगी। अगर फिर भी चीज़ें सही नहीं रहीं तो मैं खुद तुम्हारे पास आऊंगी, आयु ने रिक्वेस्टिंग वे में कहा। पहले उसकी आंखें नम थीं तो अब वो रोने लगी थीं। आयु और मानसी अच्छी दोस्त भले ही ना हो, लेकिन दोनों ही अच्छी कुलीग और डॉक्टर थीं। आयु की हालत देखकर मानसी ने कहा, ठीक है, सिर्फ 2 महीने, उसके बाद तुम एक दिन भी इधर उधर नहीं करोगी। अगर 2 महीने बाद तुम्हारी रिपोर्ट्स में कोई सुधार नहीं हुआ तो मैं तुम्हारे हस्बैंड से भी बात करूंगी और तुम्हें भी मेरी बात माननी होगी। तब तक ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच रहेगी। आयु के आंसू देखकर मानसी बहुत जल्दी मान गई थी। आयु ने अपने आंसू पोंछे और मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू सो मच डॉक्टर मानसी, जिस दिन मैं अपना बेबी डिलीवर करूंगी ना, उस दिन मुझसे ज़्यादा खुश तुम होने वाली हो। अगर ऐसा हुआ तो वाकई मैं उस दिन बहुत खुश होंगी, लेकिन तुम्हें कोई झूठी होप भी नहीं देना चाहती, तुम्हें रिजल्ट के लिए तैयार रहना होगा, मानसी ने जवाब दिया। आयु ने उसके बात पर हामी भरी। उसके बाद मानसी ने आयु के लिए काफ़ी सारी दवाइयाँ लिखीं और उसे सब कुछ समझा दिया। दवाइयाँ समझाने के बाद मानसी ने कहा, बाकी चीज़ें तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है, बस खुद का हर तरीके से ध्यान रखना, स्ट्रेस नहीं लेना है, जो चीज़ स्ट्रेस दे उससे दूर रहना, बाकी कुछ समझ ना आए तो कभी भी कॉल कर सकती हो। आयु ने मानसी को थैंक्स कहा और फिर वहां से चली गई। उसके बाद आयु आरव के रूम में आई तो वो सो चुका था। आरव को सोता हुआ देखकर आयु कमरे से बाहर निकली ही थी कि उसे अपने मॉम डैड दिखाई दिए, जो आरव से मिलने आए थे। उन्हें देखते ही आयु उनके पास चली गई। उसने ताराजी को हक करते हुए कहा, आई एम सॉरी, आप हॉस्पिटल में इतनी बार आई और मैं ठीक से आपसे बात भी नहीं कर पाई। कोई बात नहीं, तुम आरव के लिए बहुत परेशान थी इसलिए तुमने ध्यान नहीं दिया। अपना भी ख्याल रखो बेटा, देखो कितनी कमज़ोर लग रही हो, तारा ने आयु को सहलाते हुए कहा। फिर जय जी ने आयु से पूछा, तुमने कुछ खाया या अभी भी ऐसे ही घूम रही हो? आयु ने बिना कुछ कहे ना मैं सिर हिलाया, तो जय जी उसे गुस्सा दिखाते हुए बोले, तुम सच में बहुत लापरवाह हो, तुम्हें खुद के बारे में भी सोचना चाहिए। आरव ठीक हो चुका है, चलो मेरे साथ आओ, हॉस्पिटल कैंटीन में चलकर कुछ खा लो। जय जी आयु और तारा को साथ लेकर हॉस्पिटल के कैंटीन एरिया में आए। वो लोग खाना खा रहे थे तभी जय जी का कॉल आया तो उन्हें बाहर जाना पड़ा। उनके बाहर जाते ही आयु को तारा से अकेले में बात करने का मौका मिल गया। आयु ने प्यार भरी नज़रों से तारा जी की तरफ देखा और फिर कहा, मॉम आप बहुत खुश हुई होंगी ना जब आपको रुद्र भैया के पैदा होने का पता चला था, भाई का बर्थडे आ रहा है तो ऐसे ही पूछ लिया। तारा जी ने आयु को गौर से देखा और फिर सिर हिलाकर कहा, कोई भी ऐसे सवाल बेवजह नहीं पूछता है, तुम इतना पर्सनल सवाल मुझसे पूछ रही हो जबकि हम दोनों की तो ठीक से बनती तक नहीं। तुम प्रेग्नेंट हो क्या? तारा जी ने सीधा सीधा पूछ लिया। आयु उनसे कुछ छुपाना नहीं चाहती थी, उसे भी कोई ऐसा शख्स चाहिए था जिसे वो सब कुछ बताकर अपने दिल की बात कह सके। आयु ने हाँ में सिर हिलाया और फिर धीरे से कहा, लेकिन इस बारे में आप अभी किसी को बताइएगा मत, आपको तो मेरी हेल्थ कंडीशन का पता है तो मुझे थोड़ा टाइम चाहिए होगा। नहीं बताऊंगी, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है कि तुमने मुझे ये बात सबसे पहले बताई, आरव से भी पहले, तारा जी ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर आयु को गले लगा लिया। उन्होंने आयु को सहलाते हुए कहा, ये फीलिंग अपने आप में बहुत स्पेशल होती है, धीरे धीरे तुम खुद समझ जाओगी, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। तुम्हारी आरव से शादी हुई थी तब लगा नहीं था कि तुम दोनों ज़्यादा दिनों तक साथ रह पाओगे, लेकिन आज तुम दोनों का प्यार देखकर हमें अपनी डिसीजन पर बिल्कुल अफसोस नहीं होता। हाँ, वो मेरा बहुत ख्याल रखता है, आयु ने तारा जी से अलग होकर कहा। वो दोनों एक दूसरे से काफ़ी अच्छे से बातें कर रही थी तभी जय जी आ गए। आयु की अपने मॉम डैड के साथ पहले भी कुछ खास ज़्यादा बात नहीं होती थी, उसका बचपन अपने दादा के साथ बीता था इसलिए वो उनके ज़्यादा क्लोज थी। उन दोनों को साथ में अच्छे से बात करते हुए देखकर जय जी ने कहा, लगता है मुझे ये मोमेंट कैप्चर कर लेना चाहिए क्योंकि तुम दोनों को मैंने इतने अच्छे से बात करते पहले नहीं देखा। बोलते हुए उन्होंने अपना मोबाइल निकाला और उन दोनों की फ़ोटो क्लिक की। आयु का सिर तारा जी के कंधे पर था। तारा को सब कुछ बताने के बाद आयु को भी थोड़ा हल्का महसूस हो रहा था, तो वहीं तारा भी आयु के प्रेग्नेंट होने की बात जानकर काफ़ी खुश थी। आरव को होश आए हुए लगभग 5 दिन बीत चुके थे और आज उसे डिस्चार्ज मिलना था। इन 5 दिनों में आयु खुद का पूरा ध्यान रख रही थी और साथ में आरव का भी। आरव अब लगभग ठीक हो चुका था। डिस्चार्ज के लिए आयु फॉर्मेलिटी कंप्लीट करने के लिए रिसेप्शन एरिया में गई हुई थी, जबकि अयान आरव के साथ था। इन 5 दिनों में उसे आरव से अकेले में बात करने का मौका नहीं मिला था। अयान के साथ अकेले बात करने का मौका मिलते ही आरव ने पूछा, तुमने साक्षी से बात की? उसने तुम्हें सब बता दिया क्या? हाँ, उन्होंने मुझे सब बता दिया। थैंक यू सो मच भाई, उनके लो मोमेंट पर उन्हें संभालने के लिए। आप बहुत अच्छे हो, अयान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और आरव को हक कर लिया। आरव ने अयान को खुद से अलग किया और मुंह बनाते हुए कहा, ये तुम्हारी बात बात पर हक करने की आदत अभी गई नहीं ना? मेरे तक तो ठीक है, लेकिन मेरी मिसेस खुराना से ऐसे चिपका मत करा करो। आई डोंट लाइक दिस, कोई मेरे अलावा उसे टच करे। अयान ने मुस्कुराकर उसकी बात पर हामी भरी। फिर आरव ने अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस को सीरियस किया और अयान की तरफ देखकर कहा, मेरी फ्रेंड का हमेशा ध्यान रखना, उसके साथ पास्ट में जो भी हुआ हो, लेकिन उसे लेकर अगर तुमने कभी भी उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। आप क्या अपने भाई को इतना कमजोर समझते हो कि ऐसी बात जानने के बाद मेरे दिल में साक्षी के लिए रिस्पेक्ट कम हो जाएगी? आप ही ने मुझे पाला है तो खुद के दिए संस्कारों पर थोड़ा तो यकीन रखिए, अयान ने जवाब दिया। अयान की बात सुनकर आरव ने सिर हिलाकर कहा, एक्सक्यूज मी, मैं तुमसे सिर्फ 2 साल बड़ा हूँ, मैंने तुम्हें कहाँ पाला है जो तुम मेरे बेटे की तरह बात कर रहे हो? खैर इसे छोड़ो, मुझे तुमसे कुछ चाहिए। मिसेस खुराना बाहर गई हुई है, उसके आने से पहले मुझे उस फैज खान से मिलने जाना है। आरव जाने से पहले फैज से मिलना चाहता था। अयान ने उसे मना किया, लेकिन आरव के आगे उसकी कहाँ चलने वाली थी। अयान ने आरव को व्हील चेयर पर बिठाया और उसे फैज के रूम में ले जाने लगा।
आरव पूरी तरह ठीक हो चुका था, इसीलिए उसे डिस्चार्ज मिल रहा था। हॉस्पिटल से जाने से पहले आरव एक बार फैज से मिलना चाहता था। आयु आरव के डिस्चार्ज की फॉर्मेलिटी कंप्लीट करने के लिए बाहर थी, इसीलिए आरव ने अयान से उसे फैज के रूम में ले जाने के लिए कहा। आरव के पैर की चोट अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी, इसीलिए अयान ने उसे व्हीलचेयर पर बिठाया और फैज के रूम में ले जा रहा था। फैज के कमरे की तरफ जाते हुए अयान ने आरव से पहले ही कहा, मेरा इसे कोई लेना देना नहीं है, अगर आयु को इसके बारे में पता चला तो आप ही उसे संभालोगे। देखा जाए तो आप दोनों ही हस्बैंड वाइफ काफ़ी ज़िद्दी हो, पता नहीं कैसे बार बार उसके कमरे में पहुंच जाते हो। मिसेस खुराना उससे मिलना नहीं चाहती तो वो कोइंसिडेंटली पहुंचती है, और मैं जानबूझकर, आरव ने तिरछा मुस्कुराते हुए जवाब दिया। जैसे ही आरव और अयान फैज के रूम के आगे पहुंचे, उन्हें काफ़ी हैरानी हुई क्योंकि वहाँ की सिक्योरिटी हट चुकी थी। आरव और अयान अंदर गए तो फैज वहाँ पर नहीं था, उसका अटेंडिंग स्टाफ फैज का सामान समेट रहा था। अयान ने एक वार्ड बॉय से पूछा, मिस्टर खान कहाँ हैं और तुम उनका सामान क्यों हटा रहे हो? उनकी हालत अभी ठीक नहीं थी, उन्हें डिस्चार्ज इतनी जल्दी कैसे मिल सकता है? क्या उन्होंने हॉस्पिटल चेंज कर लिया है? डॉक्टर सिंघानिया, शायद आप इस तरफ आए नहीं इसीलिए आपको नहीं पता, उनकी बॉडी काफ़ी हद तक हील हो चुकी है, इसीलिए उन्होंने डिस्चार्ज ले लिया। आगे का ट्रीटमेंट वो अपनी कंट्री से लेना चाहते हैं, वार्ड बॉय ने बताया और फिर अपना काम वापस करने लगा। ये एक अच्छा संकेत नहीं था कि फैज वहाँ से चला गया था, वो उनकी आंखों के सामने वो रहता तो आरव और अयान उस पर पूरी नज़र रख सकते थे। अयान आरव को लेकर वापस उसके रूम में जा रहा था। रूम में आने के बाद अयान ने आरव से कहा, आपको कोई स्ट्रांग मेडिसिन यूज़ करनी चाहिए थी, कम से कम 10 से 15 साल के लिए तो पैरालाइज करते, उसने तो बहुत जल्दी इम्प्रूवमेंट कर लिया। ड्रग काफ़ी स्ट्रांग थी अयान, मुझे भी अजीब लग रहा है कि उसने इतनी जल्दी खुद को कैसे ठीक कर लिया। जो भी हो, अब हमें थोड़ा अवेयर रहने की ज़रूरत है, हमला तो वो ज़रूर करेगा और उसके इरादे भी ठीक नहीं हैं, आरव ने जवाब दिया। उसके चेहरे पर हल्के परेशानी के भाव थे। आरव और अयान बातें कर रहे थे तभी आयु वहां आ गई। उसे देखते ही आरव ने अयान को चुप रहने का इशारा किया और खुद के फेस एक्सप्रेशंस को नॉर्मल किया। वहां उन दोनों के बीच चुप्पी देखकर आयु ने कहा, लगता है दोनों भाइयों के बीच कुछ ज़्यादा ही ज़रूरी बात चल रही है, मुझे देखते ही दोनों चुप क्यों हो गए, कहीं मेरी बुराई तो नहीं कर रहे थे ना? तुम्हें लगता है मिसेस खुराना कि तुम्हारा ये फ्रेंड तुम्हारी बुराई सुनेगा भी? चलो इस बात को जाने देते हैं, एक गुड न्यूज़ सुनानी थी, अयान और साक्षी के बीच पैचअप हो चुका है और जल्द ही दोनों शादी करने का सोच रहे हैं, आरव ने बात को टालने के लिए कहा। अयान और साक्षी के बीच सब कुछ ठीक होने का सुनकर आयु भी काफ़ी खुश हुई। वो अयान की तरफ देखकर मुस्कुराई और कहा, आई एम सो हैप्पी फॉर यू, चलो अब तुम दोनों भी जल्दी से शादी कर लो ताकि तुम्हें भी पता चले कि शादी करने के बाद लाइफ कैसी हो जाती है। बोलते हुए आयु खुश होकर अयान के गले लगने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन तभी आरव ने व्हीलचेयर से अपना एक पैर आगे किया। उसके ऐसा करने पर आयु ने आरव की तरफ तिरछी निगाहों से देखते हुए कहा, ये क्या तरीका हुआ, तुम मुझे से मेरा इकलौता फ्रेंड छीन नहीं सकते हो? हाँ तो दूर से दोस्तियाँ निभाओ ना, ऐसे बात बात पर गले लगने की क्या ज़रूरत है, आरव ने आयु को घूरते हुए कहा। अच्छा ठीक है, आप दोनों बहस करना बंद कीजिए, अयान ने चिढ़ते हुए कहा। फिर वो आरव की तरफ देखकर बोला, मुझे मॉम को मनाना होगा, उन्होंने मुझे साक्षी के साथ देख लिया था और उनके तेवर देखकर साफ था कि वो खुश नहीं है। वैसे तो उनकी हायाना से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे सिंपल वेडिंग नहीं चाहिए। हाँ तो खुराना मेंशन में आकर शादी कर लेना ना, आरव ने जवाब दिया। अयान ने आगे कुछ नहीं कहा। आरव की डिस्चार्ज फॉर्मेलिटी पूरी हो जाने के बाद आयु उसे अपने साथ घर लेकर जा रही थी। आयु किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसीलिए उसने कबीर को बुला लिया था और कबीर ही गाड़ी ड्राइव कर रहा था। आयु आरव के साथ बैक सीट पर थी और उसका हाथ पकड़ रखा था। तुम मुझे अभी भी थोड़ी खोई खोई लगती हो, क्या कोई बात है तुम्हारे दिल में जो तुम्हें परेशान कर रही है? आरव ने आयु की तरफ देखकर पूछा। बाकी आयु का ध्यान अब ज्यादातर अपने बच्चे में ही रहता था। आयु आरव की तरफ देखकर मुस्कुराई और नामे सिर हिलाकर कहा, नहीं सब ठीक है, तुम्हें लेकर घर पहुंच जाऊं फिर मेरी सारी टेंशन दूर हो जाएगी। आयु ने जैसे तैसे करके बात को टाल दिया। आरव ने भी इस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वहीं दूसरी तरफ फैज इस वक्त दुबई में था। उसके वापस आने पर पूरी खान फैमिली खुश थी, लेकिन वो उसके वहां आने की न्यूज अभी बाहर रिवील नहीं करना चाहते थे। फैज की कमर के ऊपर का हिस्सा ठीक हो चुका था, जबकि नीचे का हिस्सा अभी भी पैरालाइज था। फैज अपने कमरे में बैठा था और उसके हाथ में एक एनवेलप था। फैज के चेहरे के एक्सप्रेशन सर्द थे। फैज ने एनवेलप की तरफ देखते हुए कोल्ड वॉइस में कहा, तो आप आरव खुराना के बच्चे की माँ बनने वाली हैं? ना जाने कैसे, लेकिन फैज सब जानता था और इस वक्त उसके हाथ में आयु की ही रिपोर्ट्स थी।